बसावा के वचनों वचनों के से लिए गए नीचे लिखे उद्धरण लिंगायतों के सिद्धांत प्रदर्शित करते हैं। ईश्वर एक है। एक हे कुदल संगम देव, केवल आप ही स्वामी हैं और आप शाश्वत हैं। यह आपका विरुद्ध है, मैं इसकी घोषणा करता हूँ, जिससे सारा संसार इसे जान जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से परे कोई शब्द नहीं है। पूरे ब्रह्मांड भर में सर्वशक्तिमान ईश्वर पशुपति ही एक ईश्वर है। समग्र स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और परलोक में एक ही ईश्वर है। दो, जब चार युग और उन युगों के 18 चक्रों का विनाश किया जा रहा था, तब मैंने उन तथा कथित देवताओं को जीवित नहीं देखा, और जब सब जल रहा था तब भी मैंने उन्हें नहीं देखा, और न ही मैं उन्हें देख रहा हूँ। न तो उस दिन और न इस दिन मैं इन ईश्वरों को देखता हूँ, सिवाय कुदल संगम देव के। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि जो ईश्वर लाख से भरा है वह और पिघल जाता है, और जो आगे आग से स्पर्श होने पर सिकुड़ जाता है उस ईश्वर के बराबर है। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि समय आने पर जिस ईश्वर को बेचा जाता है वह उस ईश्वर के बराबर है। मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि भय के समय जो ईश्वर भूमि में दफन कर दिया जाता है वह उस ईश्वर के बराबर है। कुदल संगम देव ही एक ईश्वर है, जिसकी स्थिति प्राकृतिक है, जो सत्य के साथ एकाकार है, शाश्वत है और शुद्ध तथा स्पष्ट है। सोचो, हजारों में एक ही पत्नी ऐसी होती है जो प्रेम करती है। इसलिए आस्था रखने वाले भक्त के लिए केवल एक ही ईश्वर है। ओह, अन्य देवताओं का साहचर्य मत तलाशो। दूसरे देवताओं की बात करना पर स्त्री गमन के समान है। ईश्वर सार्वभौमिक है। हे कुदल संगम देव, मैं जहाँ भी देखता हूँ आप वहाँ हैं। हे ईश्वर, आप एक हैं और आपकी विश्वव्यापी दृष्टि है। आप ही हैं जिसका एक विश्वव्यापी मुंह है। आप ही हैं जिसकी विश्वव्यापी भुजा है। आप ही हैं जिसका सर्वव्यापी पैर है। हे कुदल संगम देव, आपकी चौड़ाई ब्रह्मांड के समान और आकाश के समान है। आपके शुभ चरण ब्रह्मांड के बहुत परे हैं। हे लिंग, आप अबूझ, अनंत, दुर्बोध और अतुलनीय हैं। प्रायश्चित समारोहों पर विश्वास मत करो। तुम जिसने पाप कर्म किए हैं, तुम जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, केवल एक बार कहो, मैं ईश्वर के समक्ष समर्पण करता हूँ। यदि तुम एक बार कहो मैं समर्पण करता हूँ, तो सभी पाप टूट जाएंगे और तिरोहित हो जाएंगे। प्रायश्चित के लिए स्वर्ण के पर्वत भी पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए केवल एक बार कहो, उस एकमात्र हमारे कुदल संगम देव के प्रति मैं समर्पण करता हूँ। बलि मत दो, उसे अकेला छोड़ दो। उस अश्व बलि को उसे अकेला छोड़ दो। अजप मंत्रों की दीक्षा अकेला छोड़ दो। अग्नि में हवन और गायत्री मंत्रों का वह पाठ, जिन्हें उन्हें अकेला छोड़ दो। लोगों को सम्मोहित करने के लिए उन तंत्र मंत्रों को ध्यान रखो। कुदल संगम देव का साहचर्य और उनके शब्द इन सभी से महान है। जो ईश्वर को सूक्ष्म मार्ग नहीं जानता है उसके लिए ग्रहण का समय 24 तिथियों से श्रेष्ठ है। उपवास का दिन संक्रांति से बहुत श्रेष्ठ है। किंतु जो निरंतर कुदल संगम देव का ध्यान करता है, ऐसा ध्यान मंत्रों के अनवरत जाप से और कठोर तपस्या से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। जाति पर विश्वास मत करो। क्या वे सिंहासन पर बैठे राजा में सुंदरता खोजते हैं? जब कोई लिंग का उपासक है तो क्या उसकी जाति देखना चाहिए? क्योंकि ईश्वर का यह शब्द है कि भक्त का शरीर ईश्वर का शरीर है। पुरातन लोगों के सिवा यह कोई नहीं जानता। रुको रुको, केवल ईश्वर भक्त ही सबसे ऊंची जाति का होता है। इसलिए जाति का कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए। वह न तो जन्मा है और न अजन्मा है। कुदल संगम देव का सेवक सीमातीत है। क्या हुआ जो उसने चार वेद पढ़े हैं? जिसके पास लिंग नहीं है वह महार है। वह महार नहीं है तो क्या हुआ? जिसके पास लिंग है वह बनारस है। उसके शब्दों का समूह अच्छा है। वह सभी लोकों में पवित्र है। उसका प्रसाद मेरे लिए अमृत है। कहा जाता है मेरा भक्त मुझे प्यारा है, चाहे वह महार ही क्यों न हो। वह मुझे स्वीकार्य है। मेरे समान उसकी भी पूजा की जानी चाहिए। चूंकि ऐसा कहा गया है इसलिए जो कुदल संगम देव की पूजा करता है और उसे जानता है वह सट दर्शन से भी महान है और सभी लोकों में शुद्ध है। वेद कांपने लगे, शास्त्र परे चले गए, तर्कशास्त्र गूंगा हो गया और आगम भी बाहर चला गया और हट गया, क्योंकि हमारा कुदल संगम देव ने चंदनैया महार के घर में भोजन किया था। इससे क्या हुआ कि वह किस जाति का है? जो भी ईश्वर का प्रतीक धारण करता है वह सबसे ऊंची जाति का है। कहा गया है जो ईश्वर से पैदा हुआ है उसकी जाति पवित्र है और वह जन्मों से मुक्त है। उसकी माँ उमा है और उसका पिता रुद्र है और निश्चित रूप से उसकी जाति ईश्वर है। चूंकि ऐसा कहा गया है मैं उसकी जूठन स्वीकार करूंगा और उन्हें विवाह में अपनी संतान दूंगा। हे कुदल संगम देव, मैं आपको सेवकों पर विश्वास रखता हूँ। निष्काम कर्म करो। आपका जो कर्तव्य है उसके बदले केवल शब्दों के धागों से उदाहरण के लिए ईश्वर की सभी रचे हुए जीवों को आत्मा है से काम नहीं चलेगा। आपको कुदल संगम देव से के सेवकों गुरु के लिए अपने शरीर मस्तिष्क और आत्मा का उपयोग करना चाहिए। शरणागति, उन चीजों की तुलना मत करो जो अतुलनीय हैं। वे समय और कर्म से परे हैं, सांसारिकता से परे हैं। हे कुदल संगम देव, क्या समुद्र महान है? वह पृथ्वी से सीमित है? वह सर्पों के स्वामी के मुकुटमणि पर टिकी रहती है? क्या सर्पों का स्वामी महान है? वह तो पार्वती की कनिष्ठा अंगुली की एक अंगूठी है। क्या पार्वती महान है? वह तो परमेश्वर का आधा शरीर है। क्या परमेश्वर महान है? वह तो हमारे कुदल संगम देव के सेवकों के मस्तिष्क के शिखर के सिरे पर सीमित है। उसकी उत्पत्ति वायु के जीवों के समान नहीं है। आपका के सेवक लिंग की रचना है। वह एक पर विश्वास करता है। उसका हृदय अस्थिर नहीं है। वह मस्तिष्क में प्रवेश करता है। वह अपनी शारीरिक विशेषताएं भूल जाता है और आपको पूछता है। वह तो आपकी ही परछाई है। हे कुदल संगम देव, अंतिम आत्मसात की स्थिति, जब मेरा शरीर जल में बर्फ के समान या अग्नि में लाख की मूर्ति के समान पिघल जाता है, तब मैं जो अनुभव करता हूँ मैं उस परमानंद के बारे में क्या कह सकता हूँ? मेरी आंखों का जल अपनी सीमाएं तोड़ कर बह गया है। ओह, मैं कुदल संगम देव के साथ मन से एकाकार होने के आनंद के बारे में किसे बताऊं? मैं पृथ्वी, आकाश या 10 दिशाओं को नहीं जानता। मैं उन्हें नहीं समझता। वे कहते हैं लिंग के केंद्र में समग्र ब्रह्मांड समाया हुआ है, किंतु मैं एक चट्टान के समान महासागर में गिर गया। मैं लिंग के स्पर्श के आनंद में विभोर हूँ और केवल यह कह रहा हूँ ईश्वर और द्वैधता के बारे में कुछ नहीं जानता। सिद्धार्थ दार्शनिक काव्यों की विचारधारा के थे, जो योगी थे और चिकित्सक और रसायनज्ञ भी थे। उनकी आयु तय करना कठिन है, क्योंकि उस विचारधारा के सभी चिन्ह अब पूरी तरह लुप्त हो गए हैं और उनकी रचनाओं में अब काफी रोचक परिवर्तन हो गया है। एक ब्राह्मण विद्वान भी श्री श्रीनिवास आयंगर उनके बारे में प्रशंसात्मक ढंग से नहीं लिखते। वे उन्हें छलिया और साहित्यिक चोर कहते हैं, जिन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अगस्तियार, कपिलार और तिरुवल्लुइर जैसे प्राचीन महान नाम रख लिए। उनके अनुसार वे अफीमची थे, स्वप्न की दुनिया में रहते थे और असीमित रूप से घृणित थे, किंतु यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते थे। वे अपने लेखनों में उनकी हंसी उड़ाया करते थे और उनकी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र ग्रंथों के प्रति असीमित घृणा प्रकट करते थे। वे ऐसे एकेश्वरवादी प्रशांत लोग थे जिन्होंने ईश्वर के रूप में शिव का नाम तो कायम रखा किंतु शैव पंथ की उन सभी चीजों को नकार दिया जो शुद्ध आस्तिकता से मेल नहीं खाती थी। उनका उद्देश्य उस शाश्वत प्रकाश को पकड़ना और उस तक पहुंचना था जिसे वे प्राण ज्योति, पेरोली या वेत्ता वेली कहते थे। तुम विश्व के एक प्रकाश की पूजा करोगे जिसने एक विचार से इस विशाल धरती का निर्माण किया, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाए, फिर भोर के समान प्रकट किया, अपने सम्मुख एक गुरु, मरणशील प्रजाति का उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने योगियों के समान कठोर कर्म किए, तब सिद्धों का निर्माण करके परम पद की कामना की। ईश्वर ऐसा प्रकाश है जिसे धरती और स्वर्ग और नरक सीमित नहीं रख सकते, और ईश्वर मेरा राजा है, राजाओं का राजा। ईश्वर अनुभवातीत है क्योंकि ईश्वर बहुत दूर सभी जीवों के परे पूर्णतः पीला, तथापि भीतर उसके पवित्र पैर तुम्हारे हृदय में है। वे एक ईश्वर, एक सद्गुरु पर और सभी मनुष्यों के लिए एक ही मार्ग पर विश्वास करते हैं और अनेक जन्म के सिद्धांत को और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों को उन्होंने नकार दिया। ईश्वर एक है और वेद एक है, उदासीन सच्चा गुरु एक है और उसकी दीक्षा एक है। जब यह प्राप्त हो जाता है तो उसका स्वर्ग एक है। मनुष्य पर मनुष्य का जन्म ही जन्म होता है, पृथ्वी पर मनुष्य का एक ही जन्म होता है और सभी मनुष्यों के आगमन का एक ही मार्ग एक है। किंतु जहां तक उनका प्रश्न है, जो चार वेदों और छह शास्त्रों पर विश्वास करते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रथाएं मानते हैं और बहुदेववाद में भी विश्वास करते हैं, वे नरक की आग में जाएंगे। जो लोग उनसे सहमत नहीं हैं, उनकी वे उसी कट्टरता से निंदा करते हैं जैसे इस्लाम में होती है। सिद्धार्थ भक्ति और प्रेम के मार्ग के अनुयायी थे। तिरुमुलर कहते हैं, अज्ञानी सोचते हैं कि ईश्वर और प्रेम भिन्न हैं। कोई भी नहीं जानता कि ईश्वर और प्रेम एक ही है। यदि सभी लोग यह जान जाएं कि ईश्वर और प्रेम एक ही है तो वे आपस में शांति से रहेंगे यह सोच कर कि ईश्वर एक है। सच्ची उपासना झुककर अभिवादन करने में नहीं है। मिट्टी या कीचड़ से बनी मूर्तियों को जो अग्नि में पकाई गई है कोई भी मूर्ति नहीं बनी। पत्थर या लकड़ी से, लिंग का कोई भी स्तंभ मिट्टी से हाथ के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्या ऐसे किसी देवी को देखा है जो यह जानता हो कि यह वह ईश्वर से आया है, या देवी देवताओं की उपासना में भी नहीं है। मैंने कितने पुष्प प्रदान किए प्रसिद्ध मंदिरों में, कितने मंत्र उच्चारे, मूर्ति के मस्तक को बहुधा धोया और अभी भी क्लांत पैरों से शिव मंदिरों की परिक्रमा करता हूँ, किंतु अब अंत में मैं जानता हूँ देवराज कहाँ निवास करता हूँ है, और मैं अब कभी भी अभिवादन नहीं करूँगा हाथों में से बनाए गए मंदिर को। तब सच्ची उपासना क्या है? शिव वक्यार उत्तर देते हैं, मेरे विचार पुष्प और राख हैं, मेरे हृदय के भीतर मंदिर स्थापित है, मेरी श्वास भी उसके भीतर है, एक लिंग भी है, मेरी इंद्रियां भी है अगरबत्ती के समान। उठो और चमकदार दीपों को चमकाओ, वहां भी मेरी आत्मा एक नित्यरत देवता के ऊपर छलांग मार रही है। उपासना के लिए गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है और इसलिए नीचे लिखी बातें जरूरी हैं। महान गुरु के प्रति निष्ठावान रहो, जो सत्य की शिक्षा देते हैं उससे प्राप्त करो। वह स्वर्गीय प्रकाश जो एक यह स्पष्ट कर देगा कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। सिद्धार्थ जाति में विश्वास नहीं करते हैं। पतिर किरियार ब्राह्मणों से वह पूछते हैं, हे ब्राह्मणों मेरी बात सुनो और यदि तुम दे सको तो जवाब दो, क्या वर्षा और वायु बचकर चलती हैं? कुछ लोगों से, क्योंकि वे नीची जाति के हैं। जब ऐसे लोग धरती पर चलते हैं तो क्या धरती क्रोध से हिलने लगती है, और क्या चमकदार सूर्य उन्हें अपनी किरणें देने से मना कर देता है? वे मनुष्य के भाई के आने की गहन कामना करते हैं। जाति की निरंकुशता से बिना टूटे कब हमारी प्रजाति एक महान भाईचारे में बदलेगी? किंतु उन्हें यह दृढ़ विश्वास है कि वह आएगा। हे ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो। इस पूरे श्रेष्ठ भूमि में केवल एक ही महान जाति, एक कबीला और भाईचारा है। एक ईश्वर ऊपर निवास करता है, जन्म में, शरीर में और जुबान में, और उसने हमें एक बनाया है। यहाँ दिए गए बहुत सारे उदाहरणों से पता चलेगा कि सिद्धार्थ कट्टर एकेश्वरवादी थे, और उनके लिए वेदों और शास्त्रों का या मूर्ति पूजा संबंधी अनुष्ठानों का कोई उपयोग नहीं था, और उन्होंने पुनर्जन्म को नकार दिया। सिद्धारों की कविताएं इस्लाम की कट्टर कठोरता की याद दिलाते हैं। ईश्वर के बारे में और उसमें समाहित होने के बारे में उनकी अवधारणाएं सूफियों की शिक्षाओं के अवशेष हैं, क्योंकि दोनों प्रकाश को परम सत्य बताते हैं, और वे दोनों प्रेम को ब्रह्मांड की शक्तियों में सर्वोच्च स्थिति देते हैं। रसायनों के संबंध में वे मुस्लिमों के अनुयायी थे। इसके प्रति उनका नजरिया गुल नून मिसरी और उसके अनुयायियों के जैसा ही था। अंतिम एक उद्धरण यह प्रदर्शित करेगा कि वे सूफी शब्दावली से कितने रचे बसे थे। वह जो उच्चतम है सुंदर गुलाब नहीं है, और न ही उसने ईश्वर को मधुर सुगंध से छुपा लिया है। संक्षेप में, दक्षिण में धार्मिक विचारों की प्रगति बताती है कि हिंदू पद्धति मुस्लिम विचारों को अधिकाधिक आत्मसात कर रही थी। शंकर और रामानुज तथा अन्य चिंतकों के दर्शन की जड़ें अतीत की पद्धतियों में थी। उनका प्रस्तुतिकरण मौलिक था, किंतु जहां तक उनके प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, ऐसा संभव दिखता है कि वे विचारों की उन धाराओं की पूरी तरह उपेक्षा करके विकसित नहीं हो पाए जो उस समय देश में प्रवाहित हो रही थी। किंतु अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रमाणों से निसंदेह यह बताते हैं कि वीर शैव और सिद्धार्थ ज्यादातर इस्लाम से प्रभावित हुए।